ದೀಕ್ಷ ಶಿಕ್ಷ ಗುರುರಾಚಾರ್ಯ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ಮಹಾರಾಜ್
ಗುರು.
ಎಕ್ ಛೋಟಿ ಸಿ ಪ್ರಾಕೃತ ಮೇ ನವ ದೇವತಾ ಭಕ್ತಿ ಥಿ, ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಾವನ್ನು ನವ ಖಾಯಿಯ ಪರಮ ಲದ್ದಿ ಸಂಪಣ್ಣು ಸಲ ಪರಮ ಪ್ರಸನ್ನು ಸಬ್ಬು ದೇವೋ ಜಿನೋ ಧನ್ನು. ಜೋ ಪಾಂಚ್ ಕಲ್ಯಾಣಕೋ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹುಯೇ ಥೇ, ಜಿನ್ಹೋನೆ ನೌ ಕ್ಷಾಯಿಕ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಕೇವಲ ಲಬ್ಧಿಯೋ ಕೋ ಭೀ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕಿಯಾ, ಜೋ ಸಕಲ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಸ್ ಸಂಜ್ಞಾ ಕೆ ಧಾರಿ ಹೈ, ಜೋ ಸರ್ವ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಹೈ, ಜೋ ಆರಾಧ್ಯ ಹೈ, ಐಸೆ ಜಿನೇಂದ್ರ ಭಗವಾನ್ ಅರ್ಹಂತ ದೇವ್ ಧನ್ಯ ಹೈ, ಉನ್ಕೋ ನಮಸ್ತೆ. ಉಕ್ಕಿಟ್ಟ ಗುಣಟ್ಟು ಸುದಿಟ್ಟ ಪರಮಠ ನಿಟ್ಟಿಡೋಯ, ನಟ್ಟ ದುಟ್ಟ ಕಟ್ಟು ಸಿದ್ಧೋ ಸುದ್ಧೋ ಸಯಾ ಜಯೋ, ಸುದ್ಧೋ ಸಿದ್ಧೋ ಸಯಾ ಜಯೋ. ಜೋ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಅಷ್ಟ ಗುಣೋ ಮೇ ಅವಸ್ಥಿತ ವಿರಾಜಮಾನ, ಜಿನ್ಹೋನೆ ಭಲಿ ಭಾತಿ ಪರಮಾರ್ಥ ಕೋ ದೇಖಾ, ಔರ್ ಜೋ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಹೋ ಗಯೆ, ಅಪ್ನೆ ಪರಮ ಪದ ಮೇ ವಿರಾಜಮಾನ ಹೋ ಗಯೆ, ಜೋ ಅಷ್ಟ ದುಷ್ಟ ಕಷ್ಟೋ ಕೋ ನಷ್ಟ ಕರ್ ಚುಕೆ ಹೈ, ಜೋ ಶುದ್ಧ ಹೈ, ವಿ ಸಿದ್ಧ ಸದಾ ಜಯವಂತ ಹೈ. ಸಮ್ಮತ್ತ ನಾಣ ಗರಿಸಣ ವೀರ್ಯ ಸುಹುಮಂಚ ಅವ್ವಬಾಹಂಚ ಅವಗಹಣ ಮಗುರು ಲಹುಗಂ ಹವಂತ ಸಿದ್ಧಾಣ ಮಠ ಗುಣ. ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನ ದರ್ಶನ ವೀರ್ಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅವ್ಯಾಬಾಧ ಅವಗಾಹನ ಔರ್ ಅಗುರು ಲಹು, ಯೇ ಸಿದ್ಧೋ ಕೆ ಆಠ ಗುಣ ಹೋತೆ ಹೈ. ಛತ್ತೀಸ ಗುಣಾವಾಸು ನಯ ವಿನಯ ವಿನಯ ವಿನೇಯ ಸಂಭಾಸು ಸವ್ವ ಭವಾಣ ಪಾಸು ನಂದೌ ಸೂರಿ ಸಯಾನಾಸು. ಜೊ ಛತ್ತೀಸ ಗುಣೋ ಕೆ ಆವಾಸ, ಆಚಾರ್ಯೋ ಕೆ ಛತ್ತೀಸ ಗುಣ ಹೋತೆ ಹೈ ಪ್ರಸಿದ್ಧ, ಅವು ಕೌನ್ಸೆ ಹೈ ಉಸ್ಕಿ ಚರ್ಚಾ ಅಪನ್ ಕರೆಂಗೆ. ಜೊ ನಯ ಅರ್ಥಾತ್ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ ಔರ್ ವಿನಯ ಅರ್ಥಾತ್ ವಿನಮ್ರತಾ, ಇನ್ಸೆ ವಿನತ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಜೊ ವಿನಮ್ರ ಹೋ ಗಯೆ ಹೈ, ಐಸೆ ವಿನಯ ಭಕ್ತಜನ ಶಿಷ್ಯ ಜನೋ ಕೆ ಪ್ರತಿ ಸಂಭಾಸೋ ಸಂಭಾಷಣ ಕರ್ತೆ ಉನ್ಕಾ ಸಮಾಧಾನ ಕರ್ತೆ. ಸವ್ವ ಭವಾಣ ಪಾಸೋ ಜೊ ಸರ್ವ ಭವ್ಯ ಜೀವೋ ಕೆ ನಿಕಟವರ್ತಿ ಹೈ, ಔರ್ ಸಯಾನಾಸೋ ಆಶಾಓ ಸೆ ರಹಿತ ಹೈ, ವೆ ಸೂರಿ ಆಚಾರ್ಯ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ನಂದೋ ಸಮೃದ್ಧ ರಹಿತ ಔರ್ ಸಬ್ಕೋ ಸಮೃದ್ಧ ಕರೆ. ಅವ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಜಿಣ ಸುತ್ತೋ ಗುಣ ಜುತ್ತೋ ಮಾಯಾ ಮುತ್ತೋ ಸರಸ್ವತೀ ಪುತ್ತೋ ಜದಿ ಚರಿಯಾ ಸಂಜುತ್ತೋ ಶರಣಂ ಪುಣ ಪಾಠವೋ. ಜೊ ಜಿನ್ ಸೂತ್ರೋ ಸೆ ಸಂಪನ್ನ ಹೈ ಅರ್ಥಾತ್ ಆಗಮ ಕೆ ಜಾನಕಾರ ಹೈ, ಗುಣ ಜುತ್ತೋ ಜೊ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಕೆ ಗುಣೋ ಸೆ ಯುಕ್ತ ಹೈ, ಮಾಯಾ ಮುತ್ತೋ ಜೊ ಮಾಯಾಚಾರಿ ಸೆ ಮುಕ್ತ ಹೈ, ಸರಸ್ವತಿ ಪುತ್ತೋ ಔರ್ ಜೊ ಸರಸ್ವತಿ ಕೆ ಪುತ್ರ ಹೈ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಪರಮೇಶ್ವರಿ, ಜದಿ ಚರ್ಯಾ ಸಂಜುತ್ತ ಯತಿ ಚರ್ಯಾ ಸೆ ಸಂಯುಕ್ತ ಹೈ, ವೇ ಪಾಠಕ शरणम प्रभु, हमारे रक्षक, अर्थात हमें संसार भ्रमण से बचा ले, हमें चार गतियों से सुरक्षित कर ले, हमें संसार से दुख पार लगा दे, संसार के दुखों से हमारी रक्षा कर। अब साधु परमेश जी, संयम तब गुण सारो, यम नियम छैण झाण वावारो, परमानंद विहारो, साहु सुख भव हारो। संयम और तप रूपी गुण ही जिनका सार है। साधुओं का सार क्या है? तप, संयम, मूल गुण, उत्तर गुण। मूल गुण कितने होते हैं? 28 होते हैं। उत्तर गुण कितने होते हैं? वैसे 84 लाख होता है, पर संक्षेप से देखें तो 34 होते हैं। 34 उत्तर गुण कौन से हैं? फल्टन से प्रकाशित मूलाचार की टिप्पणी में एक गाथा है, उसमें 34 उत्तर गुण दिए, वे उत्तर गुण हैं 22 परिषजय और 12 तप। परिषय और तप में अंतर क्या है? परिषय कष्ट होता है लेकिन असंकल्पित होता है, और तप संकल्पित होता है। जो यम नियम अध्ययन ध्यान में प्रवृत्त है, यम का अर्थ महाव्रत होता है, और नियम का अर्थ जो क्रियाएं कुछ काल तक की जाती, 24 घंटे नहीं चलती, जैसे स्वाध्याय आदि, उसको नियम कहा। अध्ययन, अध्ययन में चारों अनुयोगों का अध्ययन आ जाएगा, फिर ध्यान में धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान आ जाते हैं। इनमें जो प्रवृत्त रहते हैं वे साधु हैं। और कैसे हैं वे साधु? परमानंद विहार है, परम आनंद में उनका विचरण होता रहता है, परम एक सुखी सुखी। आत्मानुशासन में गुणभद्राचार्य महाराज लिखा है, इस संसार में सब दुखी हैं, केवल साधु सुखी। क्यों? क्योंकि उन्होंने आशाओं को जीत लिया। जो आशाओं के दास हैं वो दुखी हैं, जो आशाओं के विजेता हैं वो सुखी हैं। सो हो भव हारो, वे साधु हमारे भव का हरण करने वाले हैं, अर्थात हमारे संसार भ्रमण का अंत करने वाले हैं। अब छठे जो देवता हैं नौ देवताओं में, कि पांच तो पांच परमेश्वर हैं, छठे जो है जिन धर्म है। सुहण लो दुह विलो, गुणालो सम भाव संजण, सायारणयारवो जिन धम्मो कमण पलो। जो सुखों का निलय है, आवास है, धर्म में सुखों का निवास होता है, अधर्म में दुख निवास करता है। दुह विलो, धर्म में दुखों का विलय होता है, विनाश होता है, और अधर्मों में दुखों की उत्पत्ति होती है। गुणालो, और जो धर्म गुणों का आलय है, जहां धर्म होगा वहां गुण होंगे, तो जहां अधर्म होगा वहां दोष। सम्य भाव संजनो, साम्य भाव को अध्यात्म ग्रंथों में शुद्धोपयोग कहा है, पर फिर भी एक ऐसी अवस्था होती है जो शुद्धोपयोग से पूर्ववर्ती है, उसमें भी समता का अभ्यास किया जाता है, वो प्रवृत्त्यात्मक समता होती है, और शुद्धोपयोग में निवृत्ति रूप क्षमता होती है। तो साम्य भाव का जनक है, उत्पादक है कौन? धर्म। धर्म होगा तो समता भाव आएगा, अधर्म होगा तो विषमता रहेगी। और धर्म कैसा है? सागार और अनगार व्रतों वाला है। सागार धर्म और अनगार धर्म, ये दो शब्द शास्त्रीय शब्द हैं। और सरल भाषा में कहते हैं सागार यानि श्रवक श्रावक, और अनगार यानि साधु। तो श्रावक और साधुओं के व्रतों से युक्त है वो धर्म। और कम्मणो बलो, कर्म का प्रलय कारक है वह धर्म, कर्म का पूर्ण विध्वंसक है वो धर्म। कौन सा धर्म है? जीर्ण धर्म। अब आप कहोगे कि जीर्ण धर्म यानी जैन धर्म? नहीं, जीर्ण धर्म का अर्थ है जिन विजेताओं का धर्म। जिन शब्द का अर्थ क्या होता है? जयति कर्मारातीन इति जिन, कर्म शत्रुओं पर जो विजय प्राप्त करे उनको जिन कहते हैं, उनका धर्म। जिनस्यायम जैनः, ऐसा भी रूप बनता है। जैन धर्म अगर कहो तो वो भी जिनेंद्र का धर्म कहलाता है। एक ही बात है, अभिप्राय भिन्न नहीं है। तो ये छठे देवता है, धर्म को भी हम प्रणाम करते हैं। अब सातवें कौन है? जिनागम। सियपन सियपद मंडिय चरण शिवपद कर्णम जिने सिणो वयणम अन्नान तिमिर हरणम भवतरणम सच आभरणम। ये जैनागम, जिसको जिनवाणी भी कहते हैं और जिसके अनेक नाम अभी हमने बताए थे, और एक दिन हम जिन शासन का वर्णन कर रहे थे तो जिन शासन के अनेक विभाग हैं। एक जैन दर्शन जिन शासन में आता है, जिन शासन में जैन धर्म आता है, जिन शासन में जैन न्याय आता है, जिन शासन में जैन सिद्धांत और उसका गणित आता है, और जिन शासन में जैन अध्यात्म भी आता है। तो जैन दर्शन क्या है? दर्शन का अर्थ होता है मत, मत का अर्थ होता है मान्यता। तो जैन दर्शन का अर्थ जैन मान्यता। जैन धर्म का अर्थ क्या? दर्शन का अर्थ विचार भी है। जैन विचार को जैन दर्शन कहते हैं, और जैन आचार को जैन धर्म कहते हैं, आचरण, दान पूजा शील उपवास व्रत संयम यम नियम दया दान, ये सब जैन धर्म है आचरण। फिर धर्म के दो भेद, व्यवहार और निश्चय। व्यवहार सविकल्प है, निश्चय निर्विकल्प है। व्यवहार प्रवृत्ति रूप है और निश्चय निवृत्ति रूप है। फिर जैन न्याय क्या है? तो न्याय में सच का सच झूठ का झूठ प्रमाणित किया जाता है। तो सत्यासत्य की परीक्षा करने वाला जो शास्त्र होता है उसको जैन न्याय कहते हैं। जिन शासन के अंतर्गत जो सत्य और असत्य की परीक्षा करने वाला शास्त्र है उसको जैन न्याय शास्त्र कहते हैं। फिर जैन सिद्धांत। सिद्धांत क्या है? तो श्रुत स्कंद नाम का एक प्राकृत ग्रंथ है, उसमें ग्रंथकार ब्रह्मचारी नेमिदत्त ने लिखा है कि धवला, जय धवला और महाधवला, ये इस काल में जैन सिद्धांत है। बाकी कर्मकांड, जीवकांड आदि में उसका संग्रह किया गया, उसका सार संक्षेप रखा गया, गणित भी दिया गया, तो वो सब जैन सिद्धांत में आता है। जीव सिद्धांत का भी गणित है, कर्म सिद्धांत का भी गणित है, और इतना अद्भुत गणित है कि इस गणित में जब कोई डूबता है तो वो उसमें लीन हो जाता है, विपाक विजय धर्म ध्यान में चला जाता है, और एक सम्यक दर्शन का भी गणित है, एक कर्मों के उदय उपशम क्षय क्षय उपशम आदि का भी गणित है। उसकी तालिकाएं भी है, बंद विच्छित्ति की एक पूरी तालिका है, 14 गुण स्थानों में, प्रथम गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों का बंद विच्छेद होता है, दूसरे गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों का होता है, इसका पूरा क्रम है। उसी तरह उदय विच्छित्ति का भी एक पूरा चार्ट है, तालिका का अर्थ टेबल चार्ट। तो उदय विच्छित्ति में प्रथम गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों का उदय समाप्त होता है, दूसरे में कितने का समाप्त होता है, ऐसा भी एक क्रम है। कुछ कर्म ऐसे हैं जो बंधते नीचे हैं और उदय ऊपर आता है, ऊपर तक उदय चलता रहता है। कुछ कर्म ऐसे हैं जिनका बंध ऊपर होता है, उदय नीचे आता है। अब आप सैंपल के रूप में कुछ जानना भी चाह रहे होंगे अभी इस समय, तो जैसे नीच गोत्र का बंध दूसरे गुणस्थान तक होता है लेकिन उदय पांचवें गुणस्थान तक होता है, असाता का बंध छठे गुणस्थान तक होता है, उदय चौदहवें गुणस्थान तक होता है, आहारक नाम कर्म का बंध सातवें गुणस्थान में होता है, उदय प्रमत्त संयतस्यैव छठे में होता है। ऐसा क्रम बहुत विस्तार से उसमें दिया हुआ है, बहुत रोचक भी है। क्या है कि अपन एकदम से सुनेंगे तो फिर डर लगेगा, लेकिन क्रम से आगे बढ़ोगे ना तो सब जब समझ में आने लग जाए तब आनंद आता है। तो जीव सिद्धांत और कर्म सिद्धांत और उसका गणित जैन सिद्धांत में सम्मिलित है। फिर अंत में जैन अध्यात्म है। जैन सिद्धांत की 20 प्ररूपणाओं को अध्यात्म व्यवहार न्याय का विषय बताता है, और उस व्यवहार से परे जो उसमें ही अनुस्यूत है, जैसे माला होती है तो अपन दाने घुमाते रहते हैं, माला फेरते हैं, पर वो दाने कैसे जुड़े हुए हैं वहां प्राय ध्यान नहीं जाता। पता है कि जुड़े हुए हैं, माला फेलो 108 करना है बस अपने, और क्या मतलब है, और ऊपर के 3 दाने सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्र, लेकिन वो पूरी जो अखंड माला है उसमें वो जो दाने हैं वो पर्याय स्थानीय है, और अंदर जो धागा है वो गुण स्थानीय है, और गुण पर्यायवत द्रव्यम संपूर्ण माला द्रव्य है। इसी प्रकार द्रव्यार्थिक नए से देखो, पर्यायार्थिक वाला बंद कर दो, 2 आंख है जिनवाणी की संतान कभी कानी नहीं होती, अंधे तो होने का सवाल ही नहीं, तो ये बंद कर दिया आपने, द्रव्यार्थिक नय वाली आंख बंद कर दी। ये वर्णन समयसार की टीका में अमृतचंद्राचार्य ने किया है। ये आंख बंद कर दी, अब पर्यायार्थिक नय की आंख से आप देख रहे हैं, आगम का सहारा लेकर देख रहे हैं, अपनी आंख से नहीं दिखेगी तो देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं? निगोद से लेकर नर नारक आदि पर्याय दिख रही है और अंत में सिद्ध पर्याय दिख रही है भव्य जीव की। आगम चक्षु से ही देख रहे हैं ना, तो अभी पर्याय आर्थिक नय रूपी आगम चक्षु से देख रहे हैं। अब आचार्य कहते हैं कि ठीक है, अब उसको बंद कर ले, इसको खोल। बंद किया, खोला, अब कौन सा चक्षु है ये? द्रव्यार्थिक। एक भी पर्याय नहीं दिख रही, पूरा त्रैकालिक एक अखंड सत्ता वाला वो चेतन द्रव्य मात्र दिख रहा है और कुछ नहीं। असंख्यात प्रदेशी वो जीव उस द्रव्यार्थिक नय से दिख रहा है। अब आचार्य कहते हैं कि विचार कर, तूने क्या क्या देखा? दोनों आंखें मां की दी हुई थी, दोनों बंद करेगा न द्रव्य दिखेगा न पर्याय दिखेगी। अब तुझे दोनों आंखें खोल कर देखना, तब तू ज्ञानी बनेगा। एक आंख वाला ज्ञानी नहीं होता, और जिनवाणी का पुत्र एक आंख वाला नहीं होता। दोनों आंखें खोल कर देख, तदा किम पश्यति, क्या देखता है वो? अद्भुत, अलौकिक, अनंत पर्याय जिसमें से निकल रही थी वो द्रव्य और वो पर्याय सब साथ में दिख रहे हैं। द्रव्य पर्याय से अलग नहीं है, पर्याय द्रव्य से अलग नहीं है। पंचास्तिकाय में गाथा भी आती है, पज्जय विजयम दव्यम दव्य विजुत्तम न पज्जया अर्थ। पर्याय से वियुक्त द्रव्य, द्रव्य से वियुक्त पर्याय हो ही नहीं सकते। तब कभी अनुभूति की चर्चा निकलेगी तब हम आपको बताएंगे कि ये अनुभूति क्या वस्तु है। प्रसिद्धि ऐसी है कि आत्मानुभव के बिना सब व्यर्थ है, पर आत्मानुभव क्या है इसकी सिद्धि दुष्कर है। सिद्धि है ना, सिद्धि के दो अर्थ होते हैं, एक तो ज्ञान की अपेक्षा से किसी वस्तु को प्रमाणित करना सिद्धि कहलाती, और दूसरा किसी वस्तु को हासिल कर लेना, किसी वस्तु की पूर्ण उपलब्धि को भी सिद्धि कहते हैं। जैसे सिद्धों को आत्मा की सिद्धि हो गई, क्या अर्थ हुआ वहां पर आत्मा की सिद्धि? पूर्ण उपलब्धि। तो बड़ी सुंदर बात है, सीय पद मंडीय चरण, और ये स्यादवाद पद से मंडित है चरण जिसके, ऐसी जिनवाणी जिनागम। तो द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय स्यादवाद के बिना संभव ही नहीं। द्रव्यार्थिक नय से सब कुछ नित्य है, पर्याय आर्थिक नय से अनित्य है। ये सब चलता रहता है, बहुत सारा विस्तार है। तो आगम कैसा है? सीय पद मंडीय चरण, स्यात पद से मंडित है चरण जिसकी। चरण का अर्थ जितने काव्य हैं आगम में, उनके एक एक चरण में, यानी एक काव्य में चार चरण होते हैं ना, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। दो, जब दिल खोजा आपना, मौसम बुरा न कोई। चार चरण हो गए। तो एक एक चरण जहां पर स्यात इस पद से सुशोभित है। और कैसा है जैनागम? शिवपद करण मोक्ष पद का कारण है। आगम के बिना कोई मोक्ष को प्राप्त नहीं होता। और कैसा है आगम? जिनेशिनो वैणम, जिनेश्वर के वचन। और अन्नान तिमिर हरणम, अज्ञान तिमिर का हरण करने वाला, अज्ञान रूपी तिमिर, तिमिर का अंधकार, उसका हरण करने वाला है। और भवतरणम, संसार से तारने वाला है। और सच आभरणम, आगम का आभूषण क्या है? सत्य। आगम में असत्य नहीं है, सत्य ही भरा हुआ है। तो ऐसे आगम को, जिनागम को प्रणाम। फिर जिन चैत्य, ये भी नव देवताओं में अष्टम है। जिन चैत्य, चैत्य का अर्थ होता है पूज्य प्रतिमा। जो प्रतिमा पूज्य है वो चैत्य। उसके दो भेद, अकृत्रिम और कृत्रिम। अकृत्रिम एक प्राकृतिक रचना है, जिसको न मनुष्य ने बनाया, न देव ने बनाया, न किसी तिर्यंच ने बनाया, बनी बनाई है। जैसे कभी कभी ये कुद्रेमुख नाम का जो पहाड़ है कर्नाटक में, दूर से देखो तो कुद्रे यानी घोड़ा होता है, तो घोड़े का मुख जैसा लगता है। तो अब वो उसको, इतने बड़े पहाड़ को किसी ने कोरेद कर तो नहीं बनाया होगा, कार्व करके बनाया, सहज अकृत्रिम है। इसी तरह कई अकृत्रिम चैत्यालय है और चैत्य भी है, बड़े अद्भुत है वो। उनका वर्णन त्रिलोक सार में इतना सुंदर ढंग से दिया हुआ है कि पढ़ते हैं तो आनंद आ जाता है। अपन उसमें खो जाते हैं, उस कल्पना में चले जाते हैं कि उनके बाल विनील कुंतल। अकृत्रिम चैत्यालय में प्रतिमाओं के जो केश हैं वो इंद्रनील मणि के। पवाल अधर्म, ये होठ जो है मूंगे के बने हुए हैं और होठ के बीच बाल मात्र का अंतराल है, होठ ऐसे चिपके हुए नहीं है भगवान के। और उस अंतराल से अंदर वज्र दंता, डायमंड के दांत है। और आंखें भी कैसी, सबका वर्णन दिया हुआ उसमें। तो ऐसे अकृत्रिम चैत्यालय अपन ने अभी कभी पिछले जन्म में देखे हों तो अभी इस जन्म में स्मृति में नहीं है, अभी सब भूल चुके हैं। अभी तो अपन एक आध महीने की बात भी कभी कभी भूल जाते हैं, पर फिर भी अभी जो उपलब्ध है वो भी भाग्य, भाग्य की बात। काल बड़ा विकट है, इस काल में क्या से क्या हो जाता है। जिन शासन के ऊपर कितने सारे संकट आ चुके हैं, अच्छाइयों के विरोधी अधिक मात्रा में है। जिन चैत्य का वर्णन है, दस काल संपमाणा, परियर कलिया जिने सिनो पड़िमा, अकया कया यलोए मंगल भूया सया जयो। एक ताल प्रमाण करके एक माप होता है प्रतिमा का। तो जगत में जितने भी अन्य मंदिर हैं, अन्य देवता हैं, अन्य देवियां हैं, उनकी प्रतिमा है ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आदि सब, वो नौ ताल प्रमाण है। लेकिन एकमात्र जिनेंद्र की प्रतिमा दस ताल प्रमाण होती है। ये ताल प्रमाण नापने की कोई विधि है? आपके यहाँ जो महावीर शास्त्री जी हैं उनसे किसी दिन अपन इसकी जानकारी पूछ सकते हैं। उनके प्रतिष्ठा शास्त्रों में इसका वर्णन आया होता है। तो इसीलिए जब प्रतिमाएं खरीद खरीद करके लोग ले जाते हैं और फिर प्रतिष्ठा के लिए वहाँ पर रखते हैं, तो कई बार कुछ प्रतिमाओं को प्रतिष्ठित करने से वो मना कर देते हैं कि नहीं, ये आगम के प्रमाण में नहीं आ रही है ये प्रतिमा, इसमें अनेक प्रकार के दोष होते हैं। इसमें दृष्टि संबंधी दोष है, इसमें नासिका संबंधी दोष है, इसमें स्कंध संबंधी दोष है, इसमें नाभि संबंधी दोष है, नाना प्रकार के दोष निकल आते हैं प्रतिमा में, तो फिर उनको प्रतिष्ठित नहीं करते। अब क्या है कि युग इतना विकट है कि लोग यहाँ भी शॉर्टकट निकाल लेते हैं, अरे करा लो भाई तुम ज़्यादा ले लेना बोले। तो अब ये कोई तरीका है क्या? धर्म के साथ भी ऐसा करोगे तो फिर कैसे कल्याण होगा? और एक आचार्य महाराज ने कहा था कि जो प्रतिमा का श्रेष्ठ मुहूर्त होता है वो 7 वर्ष में एक बार आता है, लेकिन प्रतिमा की प्रतिष्ठाएं प्रतिवर्ष होती है। यदि 7 वर्ष में प्रतिष्ठा हो तो फिर उस प्रतिमा का समाज के ऊपर कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है निमित्त नैमित्तिक भाव की अपेक्षा से, ये आप स्वयं विचार करें। पर इतनी हड़बड़ी है कि नहीं अभी कर लो, उस निकालो निकालो कोई उस सेकंड नंबर का निकालो कोई मुहूर्त बोल, तो क्या वो नंबर 1 है और आप नंबर 2 का मुहूर्त निकालना चाहते हैं? ठीक है, पर जिनको समझ में आ जाए वो विवेक धारण कर सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं। तो 10 ताल सम्प्रमाण, 10 ताल का सम्यक प्रमाण जिस प्रतिमा का होता है, और परिकर कलय, जिन प्रतिमा परिकर से कलित अर्थात युक्त होती है। परिकर, परिकर का अर्थ क्या? शास्त्रों में प्रतिमा के साथ क्या क्या होना चाहिए तिलोय पंडिति में, त्रिलोक सार आदि में जो वर्णन है, वो सब साथ में होना ही चाहिए। अभी क्या हो गया, कुछ समय से अकेली प्रतिमा बनाते हैं और फिर ऐसे वेदी पर विराजमान कर देते हैं। तो जब आचार्य विद्यासागर महर्षि, एक सबसे पुराने ब्रह्मचारी थे संघ में जो आज छिंदवाड़ा में गृहस्थ है, विद्वान पंडित है, तो उन्होंने हमें बताया कि जब आचार्य श्री 1974 में राजस्थान से एमपी आए, लगभग 70 का दशक था, 74 के आसपास का समय था, 1974 के आसपास का समय था, और मध्य प्रदेश में आकर के उनको ऐसी प्रतिमाएं देखने मिली। राजस्थान में पूरी परिकर सहित प्रतिमाएं थी। अब तो समय बहुत बदल चुका है, तो जब उन्होंने पहली बार ऐसी प्रतिमाएं देखी तब उन्होंने, उनके मुख से ये शब्द निकला कि मूलाचार में ऐसी प्रतिमा तो सिद्ध भगवान की होती है, बिना प्रातिहार्य के, बिना वैभव के जो प्रतिमा होती है वो तो सिद्ध प्रतिमा होती है। और अरहंत प्रतिमा, अरहंत कभी वैभव रहित हो ही नहीं सकते, अरहंत सदैव वैभव संपन्न नहीं होते, प्रातिहार्य होंगे उनके। तो अब प्रातिहार्य में दिव्य ध्वनि जो है वो तो आंखों का विषय नहीं है, कानों का विषय है, फिर भी एक प्रतीक चिन्ह के रूप में जिनकी ध्वनि है ओंकार रूप, एक ओम की आकृति बनाई जाती है। जैन ओंकार भी है, एक सनातन धर्मावलंबियों का, एक हिंदू धर्म का ओंकार भी होता है, दोनों के बड़े सुंदर अभिप्राय होते हैं। पंडित नाथूलाल शास्त्री जी ने लिखा है कि ये जो ओम में 3 बना होता है वो रत्नत्रय है, और उसके बाद जो 1 रेखा होती है वो अभेद रत्नत्रय है, और उसके बाद जो 0 बनता है वो 0 विकल्प, 0 निर्विकल्प अवस्था। और उसके बाद जो चंद्राकार होता है वो सिद्ध शिला है, और ऊपर जो बिंदु है वो सिद्धालय है। ओम के बहुत सारे अर्थ हैं, कभी देखेंगे अपन इस चौमासे में, आप कभी वो प्रसंग निकलेगा तो अपन देख लेंगे। तो वो प्रतिमा कृत्रिम अकृत्रिम दोनों प्रकार की होती है, वे इस लोक में मंगलभूत है। मंगलभूत क्यों है? क्योंकि इन प्रतिमाओं के निकट अगर कोई सुदर्शन चरित्र में आता है कि किसी पूर्व भाव में सुदर्शन जी का जीव कुत्ते के पर्याय में था, और वो जैन मंदिर के पास उसकी मृत्यु हुई, तो मंदिर के पास मरण होने के कारण उसके परिणाम कुछ शांत हुए और उसको सद्गति प्राप्त हुई, वो ग्वाले का पुत्र बन गया। तो मंगलकारी ही चैत्य और चैत्यालय सया जयव, तो जिन प्रतिमाएं सदा जयवंत हो। और अंतिम गाथा है, तुंग से हर पहाड़ा आगम सम्मद ध्वजादि परिमाणा सुदाणा दुहाणा जिणालया परम कल्याणा। ऊंचे शिखर जिस जिनालय में प्रधान होते हैं, दूर से ही दिख जाते हैं शिखर, और शिखर को प्रणाम करने वाला भी लाभान्वित होता है। आगम सम्मत ध्वजादि परिमाण, आगम सम्मत जो ध्वजा आदि का परिमाण है, प्रतिमा की आकृति कितनी है, तो द्वार का आकार कितना होगा, उसका भी एक व्यवस्थित नाप बताया शास्त्र में। ऐसा नहीं कि द्वार अपनी सुविधा से आप बना लें कि भाई हमें वहां से देखना है बाहर से, हम रोज अंदर नहीं आ पाते, फिर वो थोड़ा उस साइज का बना लो बोले तो आप अपनी फैसिलिटी के अनुसार बना रहे हो। यहां कह रहे हैं कि शास्त्र के अनुसार हो। प्रतिमा की ऊंचाई जो है अंगुलों से नापी जाती है, और उसके अनुसार द्वार का परिमाण निकाला जाता है। हिम्मत नगर में एक जिनालय है, चंद्रप्रभ जिनालय, तो एक विद्वान उसके द्वार के पास आए और उन्होंने द्वार को नापा, और अंदर गए बिना उन्होंने बताया कि प्रतिमा कितने अंगुल की है, और जब अंदर गए तो उतने ही अंगुल की प्रतिमा थी। तो पहले प्रतिमाएं और मंदिर के जितने भाग विभाग हैं सबका उस निश्चित परिमाण होता था। ये गब्ब गिहा ऐसा भी लिखा हुआ है उसमें, गर्भगृह होते थे, जैसे अभी यहां पर कांच का गर्भगृह है, पीछे की दीवार है और बाकी तीन स्थानों पर कांच है। फिर मध्य में वो गंधकुटी है जिसके ऊपर जिनेन्द्र भगवान कमल पर विराजमान है, ऊपर तीन छत्र है। तो अभी जो वर्तमान पद्धति चल रही है उसमें छत्र लटकाए जाते हैं, लेकिन आगम में कहीं भी लटके हुए छत्र का विवरण नहीं है। एक चित्र दिखाते हैं आपको, दक्षिण भारत का चित्र है। ऐसे दो चित्र हैं। छत्र देखो, जो पाषाण घटित परिकर वाली जो प्रतिमा है उसमें तो बाहर से कुछ करना ही नहीं होता, उसी में अंदर वो आकृति बनी हुई होती है। लेकिन जब छत्र अलग से लगाए जाते हैं तब उसकी आकृति ऐसी होती है। किए। वो पहले पंखा घूमता था, अभी भी घूमते दिख रहा सबको ये चित्र है, ये श्रवण बेलगोल का चित्र है। तो छत्र ऊपर से नहीं लटका है, वो पीछे से एक डंडा है उसमें लगे हैं। और एक देखिए चित्र, इसमें दोनों प्रकार के छत्र मिलेंगे आपको, एक तो पाषाण प्रतिमा में छत्र लगे हुए और जो बाहर से लगा हुआ है वो भी डंडे में लगा हुआ है। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना होता है और तब जाकर के निर्दोष जनालय, आप पुराने प्राचीन जनालयों को देखोगे तो निर्दोष ही रहेंगे। नवीन जनालयों में लोगों ने अपनी टेक्नोलॉजी लगाई और फिर अपना आर्किटेक्चर लगा करके कुछ उसमें मॉडर्नाइज करने का प्रयास किया, फिर और भी बहुत कुछ हुआ है नए उसमें, तो उससे कई बार देखने में आया कि पहले लोगों में शांति थी और बाद में लोगों में दूरियां बढ़ने लगी। ऐसे कितने नगर है और कितने ग्राम है जहां पर ये उदाहरण आपको मिलेगा। आप अभी सर्वेक्षण करेंगे तो आपको कई ऐसे स्थान मिल जाएंगे जहां पर आप वहीं के लोग बताएंगे कि पहले सब अच्छा था और अब सब अलग अलग हो गए हैं, ये अलग ग्रुप वाले हो गए, वो अलग ग्रुप वाले हो गए, ये अलग ग्रुप वाले हो गए, ग्रुपिंग हो गई। और ग्रुपिंग कराने वाले भी संयोग जुड़ गए वहां पर, उस प्रकार के लोग आ गए जिन्होंने आपको बांट दिया। वैरी को भी जोड़ना धर्म हमें सिखलाए, भाई को भी तोड़ती अपनी मान कषाय। तो ये नौ देवताओं का एक छोटा सा स्तवन था, नौ गाथाएं, दस गाथाएं थी इसमें, सिद्ध भगवान के आठ गुणों की गाथा और एक जुड़ गई थी। तो वैसे तो प्रत्येक परमेश्वरी और प्रत्येक देवता के जितने भी गुण हैं उनका जब अपन विस्तार पढ़ेंगे और समझेंगे तो फिर ऐसा लगेगा कि अब जीवन में पहली बार अमृत पी रहे हैं। अमृत क्या होता है? वो देवलोगों वाला अमृत तो रसना इंद्रिय से संबंध रखने वाला है, ये हृदय से संबंधित है। अरहंत भगवान, अपन ने तीन विशेषता की तो चर्चा की थी अभी पिछले दिनों कि अरहंत में तीन विशेषता कौन सी होती है, तो वीतराग होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं और हितोपदेशी होते हैं। बिल्कुल ठीक है, वीतराग मोह के क्षय से होते हैं, सर्वज्ञ ज्ञानावरण के क्षय से होते हैं और हितोपदेशी नाम कर्म के उदय से और साथ में वीर्यांतराय के और ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षय से भी हितोपदेशी। धवला के पहले पुस्तक में लिखा है कि दिव्य ध्वनि का कारण केवल ज्ञान है, दिव्य ध्वनि कार्य है, केवल ज्ञान कारण है, व्यवहार न ऐसे। तो दिव्य ध्वनि भगवान की ध्वनि है, लेकिन भगवान के कौन से गुण से उसका रिश्ता है, कौन से गुण से उसका नाता है, कौन से गुण से वो दिव्य ध्वनि संबंध रखती है, केवल ज्ञान। और गोमटसार ग्रंथ में लिखा है पंडव निज भावा अनंत भागोद्वण विलपाणम, पंडव निजानम पुण अनंत भागो सुदनिबद्धु। जिनेंद्र भगवान ने दिव्य ध्वनि में जो कुछ बताया उससे अनंत गुना वो जानते थे, यानी उनका ज्ञान दिव्य ध्वनि से अनंत गुणा है। और दिव्य ध्वनि में जो कुछ उनने बताया, गणधरों ने जो 12 अंगों की रचना की उससे अनंत गुना दिव्य ध्वनि का विषय था। और गणधरों ने जो 12 अंगों की रचना की उसमें से आज अपने पास कितना है जिस पर ऐसे अकड़ा जा सके, कितना बचा है? तो जिनके पास अधिक होता है वो ऐसे होते हैं, जिनके पास थोड़ा होता है वो ऐसे होते हैं। जब तक अकड़ नहीं जाती आत्मा पकड़ में नहीं आती। जैनम जय सुशासन। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मा विलंब धरे। वंचित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, बलमल करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मोक्ष महा सुख को।